Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharvavediya Brahman Bhag ki Prashnopanishad ke Tritiya Prakaran ka Vichar hum log kar rahe hain. तृतीय प्रकरण में आचार्य पिपलाद जी कौशल्य के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कौशल्य के कई प्रश्नों में से दो प्रश्नों का उत्तर हो गया, तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न था कि प्राण किससे उत्पन्न होता है, उसका उत्तर बताया प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। आत्मन एष प्राण जायते इस वाक्य से, और इस शरीर में उसका प्रवेश किस निमित्त से होता है, ये जो द्वितीय प्रश्न था इसका उत्तर दिया। मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे इस वाक्य से, और मनोकृत शब्द का अर्थ है सकाम कर्म उपासनाएं, और उन्हीं सकाम कर्म तथा चिंतन से शरीर धारण कर लेता है प्राण। शरीर भोगायतन है, प्राण भोक्ता है, उसके भोग की उपपत्ति के लिए उसे शरीर धारण करना आवश्यक है। शरीर 84 लाख प्रकार के हैं, तो वह अपने मर्जी से कोई भी शरीर धारण नहीं कर सकता। शरीर धारण करने में निमित्त बनता है उसी के द्वारा किया गया पूर्व कर्म जो फलोन्मुख हुआ है, उसे यहां पर मनोकृतेन शब्द से कहा, और उसी कर्मवशात शरीर धारण यह प्राण कर लेता है। और इस शरीर में प्रविष्ट हुआ प्राण कैसे अपने आप को विभक्त करके अलग अलग स्थानों में अवस्थित होता है, तथा गौण प्राण शब्दित चक्षुरादि को भी शरीरस्थ अलग अलग अंगों में स्थापित करता है, ये तीसरा प्रश्न है। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है आचार्य पिपलाद जी के द्वारा। इसके लिए एक दृष्टांत बताया गया चतुर्थ कंडिका में कि जैसे राजा अपने अधिकारियों को अलग अलग राज्य के हिस्से में भाग में स्थापित करता है कि इस स्थान पे रह करके आप यहां की व्यवस्था देखना, आप यहां की व्यवस्था देखना, आप ये विभाग संभालना, ऐसे ही यह प्राण भी चक्षुरादि इंद्रियों को तथा स्वयं अपने किए हुए जो अलग प्रभेद हैं उनको अलग अलग स्थानों में स्थापित करता है। इसे इस राजा के दृष्टांत से समझाया गया। चक्षुरादि को भी वह इस शरीर में अलग अलग गोलकों में स्थापित करता है, और अपने जो पांच विभाग हैं उन्हें भी अलग अलग गोलकों में स्थापित करता है। इसे समझाया जा रहा है तो चक्षुरादि का गोलक तो सर्वप्रसिद्ध है, इसलिए चक्षुरादि गौण इंद्रियों के अलग अलग स्थानों को श्रुति में नहीं बताया गया। जो प्रसिद्ध चक्षुरादि इंद्रियों के स्थान हैं, उन्हीं स्थानों में यह मुख्य प्राण ही गौण प्राण रूप चक्षुरादि को स्थापित करता है। जो ये चर्म चक्षु दिख रहा है उसमें रूप ग्राहक नेत्र इंद्रिय को स्थापित करता है। कर्ण सस्कुली रूप जो स्थान दिख रहा है उसमें श्रोत्र इंद्रिय को स्थापित करता है। घ्राण इंद्रिय को स्थापित करता है नासिका में, त्वचा में स्थापित करता है। त्वग इंद्रिय को जिह्वा में स्थापित करता है रसन इंद्रिय को। ऐसे कर्म इंद्रियों को भी अपने अपने अलग अलग गोलकों में स्थापित करता है। कर्म इंद्रियों में वाग नाम की इंद्रिय का गोलक है जिह्वा, उसमें स्थापित करता है। तो हस्त इंद्रिय का गोलक है हाथ, पैर पाद नाम की इंद्रिय का गोलक है, पैरों में स्थापित करता है पाद इंद्रिय नामक गोलक को, इंद्रियों को। और पायु तथा उपस्थ में स्थापित करता है पायु और उपस्थ नामक जो इंद्रिया है उन्हें। और अपने जो पांच विभाग किए हैं उन पांच विभागों के स्थान अप्रसिद्ध हैं, इसलिए श्रुति बता रही है पंचम मंत्र में। तो प्राण की पांच वृत्तियों में एक वृत्ति है अपान नाम की, एक विभाग है, उसे पायु और उपस्थ में स्थापित करता है, उन गोलकों में स्थापित करता है। और उस अपान वृत्ति रूप से पायु उपस्थ में स्थापित हुआ जो प्राण, वह क्या करता है वहां पर अपान वृत्ति यानी अपान रूप विभाग से? तो हमारे द्वारा खाए गए अन्न का जो स्थूल भाग मल बना है उसे विसर्जित करता है, विसर्जित करने में अनुग्रह करता है पायु इंद्रिय का। और पीत जल के स्थूल भाग से जो मूत्र बना है उसे विसर्जित करने के लिए उपस्थ इंद्रिय का अनुग्रह करता है। ये बात बताई गई पायुपस्थे अपानम, इस वाक्य से यानी पायु और उपस्थ में अपने अपान नामक एक भेद को स्थापित करके उन इंद्रियों का वो अनुग्रह करता है उनके कार्य संपादन में। और प्राण स्वयं भी एक है पांच वृत्तियों में, वह मुख्य है, वो राजास्थानीय है। वह चक्षु और श्रोत्र में रहता है यानी नेत्र इंद्रिय का गोलक तथा श्रोत्र इंद्रिय का जो गोलक है वहीं पर रहता है। और मुख नाशिका के द्वारा बाहर निर्गमन करता है, फिर अंदर आता है, गमनागमन करता है। और चक्षु इंद्रिय पर तथा श्रोत्र इंद्रिय पर अनुग्रह करता है शब्द ग्रहण के लिए तथा रूप ग्रहण के लिए। ये कहा गया चक्षु श्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते। तो चक्षु और श्रोत्र में स्वयं प्राण रहता है राजास्थानीय। और ये जो प्राण का स्थान और अपान का स्थान बताया, इनके बीच में नाभि है, ये नाभि स्थान है समान वायु का। समान भी एक प्राण का ही भेद है, उसे कहा जा रहा है कि मध्येतु समानः प्रातिष्ठते क्रिया को इधर भी ले आना कि मध्य यानी बीच में, तो बीच में ये सुनते ही आकांक्षा होती है किसके बीच में, किसके मध्य में। तो प्राण और अपान का जो स्थान बताया उन दो स्थानों के मध्य में, तो अपान का स्थान पायुपस्थ और प्राण का स्थान चक्षु श्रोत्र, इनका मध्य है वो कौन है, तो वो है नाभि स्थान। इसलिए मध्य शब्द से लेना होगा नाभि को, इसलिए मध्य यानी नाभ्याम वो समान प्रातिष्ठते, समान को वो स्थापित करता अपने समान नाम की वृत्ति को, समान रूप से रहता है और वहां रह करके नाभि देश में रह करके यह समान नाम का जो प्राण का एक वृत्ति विशेष है क्या करता है, तो कहते हैं हमारे द्वारा भुक्त जो अन्न तथा पीत जो जल है इससे पाचन क्रिया के माध्यम से जो चार तीन विभागों में विभक्त हुआ, तो इन्हें जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाता है। तो जो मध्यम भाग है अन्नरस बना उसे हृदय देश में पहुंचाता है और हृदय देश में ही सूक्ष्म भाग को भी पहुंचाता है। इसलिए ये कहते हैं कि येष ही एतद् हुतम अन्नम समम नयति, येष यानी ये प्राण का जो एक भेद बताया गया समान नाम का, यह समान नाम का प्राण का भेद ही क्या करता है कि एतद् हुतम अन्नम जो आपके द्वारा हूत अन्न है, हूत यानी आहूत यानी प्रक्षिप्त, कहां पर प्रक्षिप्त, तो हवन किया जाता है जहां कहीं हवि का प्रक्षेप नहीं किया जाता, जो हवन सामग्री होती है उस हवन सामग्री का प्रक्षेप किया जाता है आह्वनीय अग्नि में। यहां कल्पना की जा रही है कि आप जो भोजन करते हो यह भोजन केवल पेट भरने की क्रिया मात्र नहीं है अपितु यह यज्ञ कर्म है, इसे यज्ञ कहा जाता है और यज्ञ में होता है एक आह्वनीय अग्नि, फिर हवन सामग्री, हवनकर्ता यजमान और हवन सामग्री का हवन होता है उसका नाम है प्रक्षेप आह्वनीय अग्नि में, और उन हवन द्रव्य से अग्नि प्रज्वलित होकर के उससे निकलती है ज्वालाएं अलग अलग, तो उनकी यहां पर यही कल्पना की जा रही है भोजन में। तो भोजन एक प्रकार से रोज जो किया जाता है वो रोज का हवन के तरह हवन है, अग्निहोत्र है। इसलिए यहां पर आप जो थाली में परोसा गया अन्न है उसे उठा करके मुख में डाल रहे हो वो ऐसे ही अंदर नहीं कर रहे हैं, वो हवन कर रहे हैं, प्रक्षेप हो रहा है आह्वनीय अग्नि में। वो आह्वनीय अग्नि कौन है, तो पेट के अंदर जो उदरीय अग्नि है जाठराग्नि, उस जाठराग्नि को ही कल्पना करना कि ये यज्ञ का अग्नि है, उसे कहा जाता है आवनी अग्नि। और जो हमारे थाली में परोसा गया भोजन है वो है आहुति द्रव्य, हवन सामग्री, और उसका हम प्रक्षेप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं हवन सामग्री का उदर्य अग्नि रूपी आवनीय अग्नि में। वो है एक एक, यानी कि एक ही बार में पूरी हवन सामग्री के पात्र में रखी हुई जो हवन सामग्री है उठा करके आवनीय अग्नि में नहीं डाली जाती, थोड़ा सा उसे ऐसे उठा करके डाला जाता है मंत्र के साथ, मंत्र उच्चार के साथ स्वाहा कह करके। ऐसे एक एक ग्रास जो भोजन की थाली में परोसा गया भोजन है वह एक एक आहुति दी जा रही है, इस प्रकार की कल्पना करनी है, भावना करनी है। और कल्पना की जा रही है तो खाली हवन पात्र से उठा करके हवन सामग्री को आवनी अग्नि में नहीं डाला जाता, मंत्र भी बोला जाता है। तो प्रत्येक ग्रास के साथ यदि हम अपने इष्ट मंत्र को जपते हैं, मानस जप करते हैं उसका और मुख में डालते हैं तो माना जाता है ये रोज का यज्ञ हो रहा है। प्रत्येक ग्रास के साथ मंत्र उच्चार किया जा रहा है, जो हमारे अपना इष्ट मंत्र है उस मंत्र से मंत्र का मानस उच्चारण और फिर एक ग्रास उठा करके मुख में डाला उस मंत्र का उच्चारण करके और अच्छी तरह से चबा करके अंदर ले गए तो उधर ही अग्नि में पहुंचे, आवनी अग्नि में पहुंच गया वो, ये प्रक्षेप हुआ, एक आहुति पड़ी। ऐसे दूसरी तीसरी, तो जितने कवल लेते हैं ग्रास लेते हैं उतने बार मानस मंत्र का उच्चारण हो जाए तो सहज वो यज्ञ होता है वह, नहीं तो खाली पेट भरने की प्रक्रिया मात्र हो जाती है। जैसे बोरी में किसान जो फसल में निकला हुआ अनाज है वो भर देता है, ऐसे पेट रूपी बोरी में भर रहे हैं पका हुआ भोजन रूपी सामग्री, और इससे अदृष्ट बनता है। इस हवन से भूख की निवृत्ति तो होगी ही, तृप्ति तो आएगी और पुण्य बनेगा, वो अलग से आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी तो जो ऐसे ही खा लेते पेट भरने के लिए उनका भी पेट भरता है, और शास्त्र ने बताई हुई प्रक्रिया से भोजन करते हैं तो उनका भी पेट भरता है, उनकी भी भूख चली जाती है, तृप्ति आ जाती है। लेकिन इनका एक पुण्य रूप अदृष्ट बनता है, वह अदृष्ट यदि आप निष्काम भाव से कर रहे हैं तो आपके चित्त को शुद्ध करेगा। इसलिए यहां पर यह कहा गया कि यद एतद हुतम अन्नम, उदर्य अग्नि में प्रक्षिप्त किया गया जो भोजन के माध्यम से अन्न है उसे उदर्य अग्नि पचाता है। यदि अग्नि न हो जाठर अग्नि तो पचाना, हम अन्न तो खा लेते हैं लेकिन हमारे द्वारा खाए गए अन्न को पचाने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है, उसे पचाता है सर्वोपकारपक सबके अनुग्रहकर्ता अनुग्रह मूर्ति भगवान ही, उदर्य अग्नि का रूप धारण करके। उदर्य अग्नि का जाठर अग्नि का एक नाम है वैश्वानर अग्नि भी, और पंद्रहवें अध्याय में भगवान ने कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि मैं ही वैश्वानर अग्नि यानी जाठर अग्नि बन करके प्राणी मात्र के शरीर में स्थित हूं और प्राण अपान से युक्त होकर के क्या करता हूं कि उस जाठर अग्नि रूप से प्राणियों के द्वारा खाए गए चार प्रकार के अन्न को पचाता हूं। जब अन्न पचता है और उसका मध्यम अंश स्थूल शरीर का संपोषक बनता है और सूक्ष्म अंश बन जाता है मन का संपोषक, तो जहां मन है वहां पर उस सूक्ष्म अंश को पहुंचाना होगा और शरीर का एक अंग ही पुष्ट हो जाए, रक्त या मांस एक ही भाग में खूब बढ़ता जाए एक हाथ में और पैर दुबले पतले होते जाए तब भी ठीक नहीं है। शरीर संवर्धित होना है तो सब शरीर के अंगों को एक साथ संवर्धन मिलना चाहिए, संपुष्टि मिलनी चाहिए। इसलिए स्थूल शरीर के प्रत्येक भाग में यह शरीर का संपोषक भुक्त अन्न का जो मध्यम अंश है जिसे अन्नरस कहा जाता है पहुंचना चाहिए, और वो पहुंचेगा कहां से, तो आपके भवन में जितने कमरे हैं और उनमें जितने बाथरूम हैं, रसोई हैं और जहां जहां नल के पॉइंट दिए हैं उन सब में पानी पहुंचना चाहिए ना। वो सीधे यदि टंकी न बने और टंकी में वो सप्लाई वाला पानी न पाइप न हो तो सीधे आपने बोरिंग में डली हुई जो मोटर है उसको शुरू कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो पानी बाथरूम और रसोई आदि में थोड़ी जाएगा। उसके लिए जहां से आपने सप्लाई दिया है उस टंकी को भरना होगा, और टंकी भर जाएगी और गेट वाल खुला रहेगा तो सप्लाई वाले पाइप से जहां जहां आपने उस पाइप को पहुंचाया हुआ है पानी को वहां वहां पानी पहुंच जाता है ठीक से, और उसका उपयोग आप कर लेते हैं। नहीं तो जहां एक जगह है वहीं से भर भर करके लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ठीक से आपके प्रत्येक अंग में यह अन्नरस पहुंचाने के लिए भगवान ने पहले से ही कंसील फिटिंग कर रखी हुई है पाइपों की, वो है अलग अलग नाड़ियां, और उन नाड़ियों के माध्यम से अन्न रस को शरीर के तत्तद अंगों में पहुंचाने वाली, रक्त को पहुंचाने वाली, श्वास को पहुंचाने वाली सब अलग अलग लाइन है। जैसे भवन के अंदर कंसील फिटिंग होती है पानी को पहुंचाने वाली पाइप अलग, तो बिजली की लाइन पहुंचाने वाले पाइप अलग डालते हैं, टेलीफोन के अलग डालते हैं, तो गैस पाइप अलग होता है। ऐसे इस भवन में भी भगवान ने अनेकों नाड़ियां अलग अलग कार्य करने के लिए बनाई हुई है, और उन नाड़ियों के माध्यम से अन्नरस पहुंचाने के लिए जहां टंकी से सप्लाई हो रहा वहां टंकी में पानी पहुंचाते हैं ना, ऐसे यह हृदय देश से ही सब ओर रक्त अन्नरस आदि जाता है, वहीं से फिर ये सप्लाई करने वाली अलग अलग नाड़ियां हैं वो आगे बताया जाएगा। तो इसलिए हृदय देश रूपी जो स्टोर है वहां तक इस अन्न के मध्यम तथा सूक्ष्म अंश को पहुंचाना आवश्यक है, उसे पहुंचाता है यह समान नाम का वायु। इसलिए यहां कहा गया कि एष ही एतद हुतम अन्नम समम नयति। ये जो मुख्य प्राण है, अत्याना मुख्य प्राण का एक भेद है समान नाम का, जिसका स्थान नाभि बताया गया, वह उदर्य अग्नि के द्वारा पाचन क्रिया के माध्यम से बनाया गया जो अन्न रस है उसे पहुंचाता है हृदय देश में अच्छी तरह से, और फिर वहां हृदय देश से अलग अलग नाड़ियों से अलग अलग स्थानों में यह सप्लाई होता है अन्न रस। और ये कर्ता कौन है? ये समान नाम का वायु, इसे बताया गया।